ओम शांति। बाप दादा, आप सब कुमारियों पर खुश हैं? खुश हैं? बहुत खुश है। और परम सतगुरु वरदानों की वर्षा कर रहा है। आज सतगुरुवार के लिए बाबा ने कहा कि ये है वरदान का दिन। याद है आपको बाबा ने ये कहा था? किस किस को याद है? अच्छा, अब उस याद को स्वरूप में लाया, चिंतन चला कि आज तो मुझे इस वरदानी दिन का पूरा पूरा लाभ लेना है। लाभ लेना अर्थात आपको जो भी बाबा से वरदान चाहिए उस संकल्प को दृढ़ता से बाबा के सामने रखो और बाबा आपको वो वरदान देगा। वरदान में मेहनत नहीं है, सिर्फ एक संकल्प की दृढ़ता और स्वतः बाबा से वरदान मिलता जिससे आप मेहनत से मुक्त हो जाते हैं। तो केवल हमने आज बाबा को जो कहा वो याद रखा, या हमें ये संकल्प चला कि जब बाबा ने आज के दिन को कहा है तो मैं बाबा से वरदान लेकर के रहूंगी? किसी को चला चिंतन? हाथ खड़ा करेंगे? अच्छा, कुछ एक को चला, ठीक है। बाकी अभी हमारे पास शाम तक का समय है और शाम को आज आप सबको बाप दादा को लेटर भी लिखना है ना, तो आप लिखेंगे और अपने आप को वरदानी मूर्त बनाएंगे। आज का विषय है स्वरक्षा द्वारा, स्वरक्षा का आधार रूहानियत और दिव्यता। लौकिक दुनिया के अंदर महिला सुरक्षा के लिए बहुत जागृति है। सरकार ने भी बहुत सारे कायदे कानून जो महिलाओं की फेवर में बनाए हैं और कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस फोन, मोबाइल, टीवी इन पर देते रहते हैं कि यदि आप टैक्सी में बैठते हैं तो पहले टैक्सी का नंबर नोट करके इस नंबर पर आप SMS कर दो और फिर अगर आपको आवश्यकता पड़े तो केवल आप वो नंबर दबाएंगे तो आपको मदद मिल जाएगी। कई प्रकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन हमारे बाबा ने सुरक्षा नहीं, सुरक्षा को क्या कहा? स्वरक्षा। स्व अर्थात आत्मा। जब हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं तब ऑटोमेटिक हमारी वो स्थिति सुरक्षा कवच का कार्य करती है। और ऐसे भी बाबा ने हमें ये आत्मा के पाठ को मुरली का पहला महावाक्य रूहानी बच्चे तो सबसे पहले बाबा हमें स्व का पाठ पक्का कराते हैं। विद्यालय का फर्स्ट और लास्ट लेसन भी क्या है, मैं आत्मा हूं। लास्ट क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूं। अब हमें देखना यह है, हमारी वो आत्मिक दृष्टि कहां तक पक्की हो रही है। मुरली में तो बाबा एक ही मुरली में कितना बारी ये महावाक्य रिपीट करते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, कहते हैं ना। हमारी पढ़ाई ही स्व की रक्षा की है। इसे पढ़ते पढ़ते जिसके ऊपर लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहां बाबा पहले दिन ही उस भान को खत्म करता है, देही भान से मुक्त। इसका आधार जो रूहानियत कह रहे हैं, रूहानियत कैसे हमारे में आएगी, कल भी मैं एक शब्द कहा था, बाबा की मुरली। क्योंकि पढ़ाता बाबा किस में है, मुरली के द्वारा पढ़ाता है ना। और जब रूहानियत हमारे में आती है, सारा दिन कर्म करते हुए हम ये अभ्यास करते हैं, न सिर्फ स्वयं को आत्मा समझते हैं लेकिन सामने वाली जो व्यक्ति है उसको भी हमें आत्मा देखना है। बहुत समझने की बात है कि कैसे बाबा ने यज्ञ की स्थापना से ही बच्चों को अपना गोद का वारिस बनाया, तब से ही ये सुरक्षा कवच पहनाया है या उसकी विधि बाबा ने सिखाई है। ऐसा गहरा आत्मिक अभ्यास जिससे ये जो 63 जन्मों का देह का भान है, मैं सुंदर लगती हूं, मैं कैसा बोलती हूं, मेरी आंखें कैसी हैं, मेरी चाल कैसी है, टोटल जो विकृत बातें हैं उनसे बाबा ने हमें निवृत्त कर दिया। और इससे अभ्यास से, सुनने से मुरली या बुद्धि के समझने से हम दूर नहीं हो जाते हैं, इसका बाबा डेली अभ्यास करा रहा है। हर मुरली के अंदर बाबा ये पढ़ा रहा है। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो हम भी जो जड़ बुद्धि थे, देह अभिमानी थे, वो अभ्यास करते 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 सुजान अर्थात अपने आप में वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते जा रहे हैं। तो जीवन की अंदर रूहानियत का होना ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा धीरे 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 अभ्यास कराते हुए रूहानियत में फिर दिव्यता शब्द आता है। दिव्यता क्या है, हमारे में अनेक गुणों को बाबा भरता है। तो रूहानियत के साथ दिव्यता, बाबा हमारे में गुणों को भरता है। केवल बाबा गुणवान नहीं बनाता, क्योंकि आज की दुनिया में भी कई लोगों के अंदर गुण हैं, किसी में बहुत मीठा बोलने का गुण है, किसी में शांत रहने का गुण है, कई प्रकार के गुण। लेकिन जब तक किसी भी गुण में ज्ञान की शक्ति नहीं है, तब तक वो गुण हमें गुणवान के साथ साथ कहां पर धोखा भी दे सकता है। जैसे हमारी निजी मम्मा ये कहा करती थी कि सिर्फ तुम मीठी नहीं बनो, जब बहुत मीठे बनते हैं और ज्ञान की शक्ति का अभाव होता है, तब वो व्यक्ति या तो वो किसी में फंस जाएगी या कोई उसमें फंस जाएगा। तो गुण में ज्ञान की शक्ति का होना, उसको हम दिव्यता कहते हैं। और दिव्यता संपन्न हमारा जीवन है। ये बाबा ज्ञान की शक्ति बढ़ता जाता है और हमारे में दिव्यता आती है और उस दिव्यता से वातावरण बनता है। तो सबसे पहले हम अपनी जो रक्षा करेंगे वो किस चीज से, किस किस चीजों से हम अपनी रक्षा करेंगे, हमारी इस कुमारी अवस्था के अंदर पहले पहले आपको संग के रंग का ख्याल रखना है। क्योंकि ये वो अवस्था है जो बहुत जल्दी किसी के भी संग के रंग में आ जाती है, उनका प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है। भले हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हैं, हम अपने जीवन को ऊंच बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा संग जो हमारी इन श्रेष्ठ भावनाओं से हमें वंचित कर देता है, और जिस समय हम किसी के संग में जाते हैं तब वो संग हमें बड़ा अच्छा और सुखदायी लगता है और हमें ये महसूस होता है कि नहीं, इससे मेरी प्रगति होगी, इससे मैं ये अच्छा सीख सकती हूँ, इससे मैं ऐसा अच्छा बन सकती हूँ, तो वो संग हमें खींचता है। लेकिन धीरे धीरे वही संग जब हमारे विचारों को प्रभावित करने लगता है और हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाते हैं, तो हमेशा कोई भी ऐसा संघ, कॉलेज या जॉब में रहते हुए, जो मुझे मेरे श्रेष्ठ मार्ग से वंचित करे, मेरी जो दिव्य धारणाएं हैं उन धारणाओं से मुझे वंचित करे, ऐसे संघ से हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे याद है बाबा ने संघ की बहुत संभाल की है। मैं छोटी थी जब मधुबन में आई, तो एक दिन एक बहन के साथ बगीचे में जाकर बैठी बाबा की झोपड़ी के पास में। बड़ी दीदी उस चीज को नोट कर रही थी। दीदी ने देखा कि ये दो बहनें बगीचे में गई हैं और दीदी ये नोट करती रही, ये वापस कब आती है। हम लोग बैठे, दोनों ही बाबा के घर में थे, वो भी मधुबन में आई हुई थी, मैं भी मधुबन में थी। थोड़ी देर हमने मुरली की पॉइंट रिपीट किया। मुरली की पॉइंट रिपीट करने के बाद में फिर उसने कुछ बात सुनाई, कुछ मैंने सुनाई, जिसको हम कहते हैं परचिंतन। और परचिंतन जब करने लगते हैं तो कितना टाइम बीत जाता है, उसमें समय का ख्याल नहीं रहता है, और उसके लिए किसी को कोई प्रोत्साहन देने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा नेचुरल चलता है। और उसमें एक घंटा बीता, हम लोग तो बड़े आराम से बातचीत करके और निकले, अपने रूम पर गई। बड़ी दीदी ने पहरे वाले को भेजा और कहा उसको बुला करके आओ। मैंने सोचा दीदी को कोई काम होगा, बड़े खुशी से हंसती हुई दीदी के पास गई, आओ मिठरी बैठो, बैठी, कहां से आ रही हो? मैंने कहा दीदी कमरे से। कमरे से पहले कहां थी? तो कहा कि बगीचे में बैठ करके मैं और फलानी बहन मुरली रिपीट कर रहे थे। बड़ा अच्छा, दीदी ने मुस्कुराया। अच्छा, स्टडी का शौक है ना, इसलिए मुरली रिपीट किया। मैंने कहा जी दीदी, अभी थोड़ी मालूम था कि आगे की कचहरी होगी। ओम शांति। तो दीदी ने पूछा क्या क्या पॉइंट रिपीट की, तो सुनाया। तो उसके बाद दीदी कहती है ये पॉइंट रिपीट करने में तुमको कितना मिनट लगा? तुम तो एक घंटा बैठे, दीदी देख रही थी घड़ी, देखा तुम इतने बजे गई थी, इतना बजे वापस आई। फिर तुमने क्या बात की? फिर सुनाया दीदी को कि इसने मुझे ये पूछा तो मैंने उसको ये कहा। फिर तुमने और क्या कहा? सारा दीदी ने निकलवाया। और उसके बाद में मुझे कहा कि आज से तुम्हें कभी भी इस बहन के साथ में नहीं बैठना है। अच्छा, क्योंकि दीदी जानती थी कि उसके अंदर पर चिंतन का संस्कार है, और मैं जब उसके संग में जाऊंगी, मेरे में ये संस्कार नहीं था, हम दो बहनें दूसरी मुरली रिपीट करते थे, पर उस दिन वो बहन मुझे मिली तो हम दोनों गए और पद चिंतन किया। तो सेफ रखने के लिए का आज से तुम इसका कभी भी संग नहीं करेंगे। तो कई बार लगता ऐसे है कि क्यों बड़े हमको ना करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि इसके संग में जाने से तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। भले वो भी बाबा की बच्ची है, ज्ञान में चलने वाली आत्मा है, क्योंकि अज्ञानियों के संग से हम अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों के संग का रंग भी हमें पुरुषार्थ के अंदर में तीव्रता की जगह आपको उल्टे मार्ग पर ले जा सकता है, इसका ज्ञान नहीं होता है। तो रूहानियत को बढ़ाने के लिए, दिव्यता संपन्न जीवन बनाने के लिए हमेशा संग का ख्याल रखेंगे। दूसरा है अन्न की संभाल। ये हम सबको पढ़ाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। आप इस लौकिक दुनिया के अंदर रहते हुए प्याज लहसुन हमने छोड़ दिया, लेकिन किसी भी मैरिज प्रसंग में जाना, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना और वहां पर वो भोजन स्वीकार करना, समझो प्याज लहसुन का नहीं खाया लेकिन वहां का भोजन खाया, ऐसे वातावरण के अंदर में हमने भोजन खाया, तो वो भोजन क्या करेगा? आपके विचारों के अंदर परिवर्तन करेगा, विकृति लाएगा। तो शुद्ध श्रेष्ठ बाबा की याद में बना हुआ भोजन वो हमें स्वीकार करना है। आप सब इस, क्योंकि 3 वर्ष से चलने वाली ज्ञान में कुमारियां हैं, तो मैं समझती हूं कि आपके सब की अन्न शुद्धि की धारणा तो पक्की होगी ना। सबकी पक्की है, कोई भी बाहर का अन्न नहीं लेते हैं। अच्छा, अब इस अन्न से तो हमने परहेज कर ली। अब बाबा कहता है आध्यात्मिक उन्नति के लिए बुद्धि का जो खुराक है संकल्प है। अगर हमें व्यर्थ संकल्प चलते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, जिन संकल्पों से आपकी आंतरिक ऊर्जा नष्ट हो रही है, तो बुद्धि के खुराक पर भी, मन के संकल्पों के ऊपर भी आपको अटेंशन रखना है। क्योंकि बाबा ने कहा जैसे तली हुई चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं, और वो तली हुई चीजें क्या करती हैं? मोटापा बढ़ाती हैं, और उस मोटापे के कारण से चलना और करना मुश्किल लगता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसी बातें व्यर्थ की करना या व्यर्थ संकल्पों के कारण से बुद्धि पर जो बोझ आता है, उस बोझ के कारण बाबा जो हमें रूहानी एक्सरसाइज कराता है, वो रूहानी एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं। तो बुद्धि का मोटापन, उसको भी हमें समाप्त करना है। तो अन्न का बहुत ध्यान रखना है। अब जब हम अन्न और संग, संग बाबा के संग में गए और अन्न भी हमारा शुद्ध है, अर्थात श्रेष्ठ और शुभ चिंतन है, उस श्रेष्ठ और शुभ चिंतन के आधार से हमारी रूहानी पर्सनैलिटी का विकास होता है। पवित्रता की शक्ति, जैसे जैसे आत्मा का चिंतन करेंगे, शुद्ध संकल्पों का खुराक उसको देंगे, ऐसे ऐसे हमारे पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाती है। सबसे बड़ा सुरक्षा का जो कवच है वो हम देवियों के पास पवित्रता का कवच है। इस पवित्रता के कवच को कैसी भी परिस्थितियों के बीच में मुझे कायम रखना है। दृष्टि, वृत्ति, बोल और व्यवहार पवित्रता के प्रकार। आपने किसी को कुछ कहा नहीं है लेकिन दृष्टि आपकी शुद्ध नहीं है, दैहिक दृष्टि है, तो दैहिक दृष्टि से क्या होगा? दैहिक आकर्षण होगी। उसके लिए बाबा जो अभ्यास करा रहा है, हमेशा अपने को आत्मा समझकर सामने भी आत्मिक दृष्टि से देखो। बोल, बोल में मधुरता है, मिठास है, लेकिन कई बार हम इस रीति से बोलते हैं, बोल मैं इस व्यक्ति को रही हूं लेकिन ध्यान मेरा उस व्यक्ति में है कि मेरी बात ये सुने। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ये सूक्ष्म पवित्रता। बात आपस में कर रहे हैं लेकिन ध्यान मेरा उस व्यक्ति तक है कि ये बात मेरी ये सुने। तो बोल के द्वारा जिस व्यक्ति को हमने अपने में अट्रैक्ट किया वो क्या है? अपवित्रता है। शुद्ध बोल है लेकिन उस व्यक्ति को बोल से हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। बात यहां करते हैं लेकिन उसको पता पड़े, वो मेरी बात सुने, उसको उसमें रस आए, तो ये भी एक सूक्ष्म अपवित्रता है। तो मन से, दृष्टि से, बोल से और कर्म से हर प्रकार की पवित्रता हमको अपने में धारण करनी है। एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छी भोजन की एक थाली है और उस भोजन की थाली को एक कुत्ता आकर के सूंघ लेता है, आप उस भोजन को खाएंगे? कुत्ते ने खाया नहीं है, जूठा नहीं किया है, लेकिन सिर्फ उसको सूंघ लिया है, खाएंगे? यूज करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने उसको सूंघा, उस भोजन को हम स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे ही मेरी वृत्ति ने अगर सामने वाले को टच किया वृत्ति से, तो बाबा उस पुष्प को स्वीकार नहीं कर सकता है। वो अपवित्र है, प्रभु के योग्य नहीं है। इतनी गहरी धारणा बाबा हम बच्चों से चाहता है। संकल्प में भी किसी के प्रति आकर्षण ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा थी, तो मीरा के पास भगवान नहीं था लेकिन मीरा को उसके अंदर अटूट विश्वास था, बस मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। तो भी उसके प्रति उसको इतना प्यार था। और बाबा तो हम सब बच्चों के सन्मुख है, बहुत प्यार से बाबा हमें पढ़ा रहा है, बाबा हमें पालना दे रहा है, हर कर्म बाबा हमें सिखा रहा है, तब हम कहते हैं मेरा तो श्री बाबा एक, दूसरा ना कोई। इतनी सूक्ष्म और गहरी धारणा मेरे मन के अंदर, एक बाबा के सिवाय دوسرا کسی کا بھی استھان نہ ہو، میں بابا کی وہ سچی سچی پوتر یوگین آتما ہوں۔ ایسی اپنی پوترتا کی شکتی کو بڑھاؤ، اور پوترتا میں وہ بل ہے جو چاہے وہ آپ اسے پراپت کر سکتی ہو۔ ہر پرستھتی میں پوترتا کا بل آپ کا رکشن کرے گا۔ میرا کو زہر کا پیالہ بھیجا، زہر کیا ہو گیا؟ امرت بن گیا۔ جادو نہیں ہے، لیکن اس کی پوزیٹیویٹی اور پیوریٹی کے جو وائبریشنز تھے، اس نے اس پوائزن کو امرت میں بدل دیا۔ اتنی طاقت تھی۔ اور یہ مالا پھولوں کی شیا بن گئی، کس آدھار سے؟ پوترتا کے آدھار سے۔ تو جب اس بھکتن میرا کی یہ اٹوٹ ایک سادھنا، ایک لگن، اس کو پوتر بنا کر کے ہر پرستھتی میں اس کی رکشا کی، تو ہم سب کون ہیں؟ ہم تو سچی سچی بابا کی یوگین بچیاں ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے اس پوترتا کے کوچ کو پہن کر رکھنا ہے۔ کوئی کہاں پر ویکتی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ کا یہ پوترتا کا کوچ آپ کی رکشا کرے گا۔ شروع شروع میں یگ کی استھاپنا میں بھی انیک پرکار کے لوگ آئے، لیکن سب بابا نے یہ بھی کہا، ان سے ان کو ساکشاتکار ہوتا تھا اور چلے جاتے تھے۔ انت میں بھی بابا نے کہا ہے، ایول سولز بھی آئیں گی، بری ورتی والے لوگ بھی آئیں گے، لیکن ان سب کی ورتی کو چینج کرنے کا، جب آپ اپنے اس سوروپ میں بیٹھے ہوں گے، آٹومیٹک ان کو آپ سے کالی کا ساکشاتکار ہوگا اور وہ واپس چلا جائے گا، آپ پر وار نہیں کر سکے گا۔ تو پوترتا ہمارا سب سے بڑا یہ رکشا کوچ ہے۔ شروع میں ایک سینئر بہن، انہوں نے ایک بار اپنا انوبھو سنایا، بولا میں سینٹر پر تھی، تب ایک تانترک آیا، اور اس تانترک کو معلوم تھا کہ یہ برہما کماریاں یوگ جو کراتی ہیں تو کھلی آنکھ سے اور سامنے میں درشٹی دیتی ہیں، اور اس تانترک کے پاس میں یہ ودیا تھی کہ جو اس کے سامنے درشٹی دے تو وہ درشٹی پات کرتا تھا، اپنے میں اس کو باندھ لیتا تھا، وہ اس کے پاس ودیا تھی۔ تو آ کر کے اس نے بولا کہ میں آپ سے یوگ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں میں بہنیں اتنی نہیں ہوتی تھی، تو اس نے بہن نے ان کو کہا کہ آپ پرماتما کا یہ چتر ہے، وہاں بیٹھ کر کے آپ یوگ کریے۔ بولا نہیں، آپ کو مجھے یوگ کرانا ہے، میں یوگ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بولی اس کی ایسی بڑی بڑی آنکھیں تھی، اور وہ کپڑے بھی اپنے الگ ڈھنگ کے پہنے ہوئے، اور اتنا جوش سے بولے، مجھے آپ کا راج یوگ سیکھنا ہے، میں آپ سے یوگ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بہن اندر گئی، دوسری بہن تھی اس کو بولا، پھر وہ مانتا نہیں تھا، کہا ٹھیک ہے بابا کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ جا کر کے سندلی پر بیٹھی اور وہ سامنے میں بیٹھا، اور بولی میں نے بابا کو کہا کہ بابا ابھی آپ آؤ اور اس آتما کو جو چاہیے آپ اس کو دو، اور ایسی پوترتا کا کوچ پہنے ہوئے ایک بابا کی یاد میں، بولی میں اتنی شکتیشالی استھتی میں ایسے ہاتھ کر کے اس کے سامنے میں بیٹھی اور اس کو درشٹی دے رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کو درشٹی دی، اس کے بو دیتے دیتے کہتی ہے، میں شیو شکتی ہوں۔ اور جیسے اس نے کہا میں شیو شکتی ہوں، بولی وہ اٹھ کر کے بھاگا۔ کس نے رکشا کی؟ آپ کی رکشا کس نے کی؟ آپ کی ایکاگرتا، آپ کی پوترتا، جس سے بابا کی پریرنا کو آپ کیچ کر سکیں اور آپ کے دوارا بابا اس کو وہ دے سکا۔ तो बाबा की प्रेरणा को, बाबा की शक्तियों को कैच करने के लिए भी हमारी बुद्धि की वो एकाग्रता और पवित्रता चाहिए। जिस पवित्रता की शक्ति से आप कहां भी कैसी भी परिस्थिति में अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं इस बात को। जहां कोई नहीं पहुंचेगा वहां पर हमारी जो रूहानियत भरी स्थिति है वो हमारी रक्षा का आधार बनती है। लेकिन इस रूहानियत भरी स्थिति को बनाने के लिए अध्ययन चाहिए। जो भी समय मिले आप समय निकाल करके अध्ययन करो, मनन और चिंतन करो। एक तो जो हम पढ़ते हैं उस पढ़ने के ऊपर में चिंतन चलता है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा तो आपका चिंतन चलेगा, अध्ययन से चिंतन होता है। दूसरा, जब किसी चीज को देखते हैं तो देखने से चिंतन चलता है, जिस पर आपका ध्यान जाता है। आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी पर आपका ध्यान गया, इसकी ड्रेस कितनी अच्छी है। व्यक्ति चला जाएगा लेकिन आपका उस पर चिंतन चलता रहेगा, वो ऐसा था, ऐसा पहना था, ऐसा कर रहा था। और तीसरा, सुनने से चिंतन चलता है। कोई कुछ बोल करके जाता है तो उस पर चिंतन चलता है। अब इन तीनों चीजों के लिए बाबा ने हमें कहा है मुरली का अध्ययन करो। और मुरली के साथ साथ ये हमारे जो लिटरेचर हैं, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां हैं, उनकी स्टडी करो। और आज भी हमारी जो दादियां हैं, इन सभी दादियों को इतना स्टडी का शौक है। बड़ी दादी थी, जब भी कहां बाहर जाती थी तो सबसे पहले मुन्नी बहन को बोलती थी, मुन्नी मेरा पढ़ने का कुछ रखा है गाड़ी में। दादी जानकी को हम देखते हैं, एक दिन पूछ रही थी, बोली ये ज्ञानमृत इस मास का तुमने पढ़ा? मैंने कहा दादी अभी पूरा नहीं पढ़ा है। दादी ने पूरा पढ़ लिया। अध्ययन करती है, एक भी बुक ऐसी नहीं है जो दादी नहीं पढ़ती है। क्योंकि अध्ययन से चिंतन चलता है। आप देखते हो नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। तो अपनी इन शक्तियों का विकास करने के लिए अध्ययन। हम कहते हैं हमारे पास में समय नहीं है अध्ययन के लिए, कॉलेज की स्टडी इतनी, ये करना है। लेकिन उसके लिए बाबा ने कहा है आपको अपनी दिनचर्या को सेट करना है। और दिनचर्या में स्थूल और सूक्ष्म दोनों को सेट करना है। आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक स्थूल काम क्या क्या करने हैं और सूक्ष्म में आज मुझे पुरुषार्थ क्या करना है। ठीक है, जैसे यहां पर हर रोज आपको सोमान दिया जाता है, इस सोमान के अनुसार आपको पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही आपको अपनी सूक्ष्म दिनचर्या कि मुझे इतने बजे ये करना है, फिर ये अभ्यास करना है, फिर ये करना है, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों दिनचर्या को जब आप सेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जरूर आप स्टडी के लिए समय निकाल सकते हैं। जब तक हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है तब तक हम समय नहीं निकाल पाते हैं। और एक अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने तो यहां तक कहा था, दिनचर्या का नियमित न होना भी अपवित्रता है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, समझा? तो कैसे भी करके अध्ययन का शौक रखो। फिक्स कर दो मुझे आधा घंटे के लिए ये स्टडी जरूर करनी है। फिर है देखना, जैसे टीवी देखी तो देखे हुए दृश्य हमें याद आते हैं, उस पर हमारा चिंतन चलता है। हमें किसको देखना है, ये मन की आंखें किसको देखें, बाप दादा को देखें। अगर आपको साकार में चाहिए तो हमारा जो आदर्श मूर्ति ये दादियां हैं, इन्हों को देखें। दादियां क्या करती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे बोलती हैं, हमेशा आदर्श को देखते रहो और उनको देखते देखते आपको जो व्यर्थ देखने का अगर संस्कार होगा तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो किसको देखना है, एक बाबा को देखना है। और सुनना किससे है, तुम्ही से सुनूं। तो जब देखना, सुनना, बोलना ये सब आपका अंतर में हो जाएगा, आप उन सूक्ष्म शक्ति के साथ, उस सत्ता के साथ रहेंगी, तो ऑटोमेटिक उस चिंतन से हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास होगा, पवित्रता की शक्ति भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो बाप दादा ने जो जो हमें इशारे दिए हैं उन सभी इशारों का यथार्थ रीति से प्रयोग करते हुए हम अपनी इस शक्ति को बढ़ाएंगे। इसके साथ में लास्ट जो हमें बल और शक्ति देता है वो है, फिर से इस बात को सिर्फ रिपीट करती हूँ क्योंकि ये पहले क्लियर हो चुकी है पॉइंट, वो है हमारा अमृत वेला। जिसमें हम ये सकाश बाबा से प्राप्त करते हैं और ऐसी शिव शक्तियां बन करके जो किसी की हिम्मत नहीं है आपके सामने देख सके। इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी तो स्व की रक्षा का कवच पहन करके आप बाहर निकलो। जब भी आप बाहर निकलो तब अपने आप को अव्यक्त फरिश्ता रूप की ड्रेस पहना करके और बाप दादा की छत्र छाया के नीचे मैं जा रही हूँ, ये दो संकल्प करके फिर आप घर से बाहर निकलो तो हमेशा आपको महसूस होगा कहाँ भी आप जा रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं और आपकी जो ड्रेस है चमकीली ड्रेस, फरिश्ते की ड्रेस, वो आपका रक्षा कवच बन जाएगा। तो इस रीति से अभ्यास करते हुए आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना करके स्वयं स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम 10 मिनट के लिए एक श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होते हुए उस गहरी स्थिति का अभ्यास करेंगे। सभी सीधे बैठेंगे, थकावट तो नहीं है, थकावट है, है? नहीं है, नहीं है तो फ्रेश होकर के बैठेंगे। प्रकुटी आसन पर विराजमान होते हुए अपने निज स्वरूप को देखिए। मैं पवित्र स्वरूप ज्योतिर्मय बिंदु प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा सर्व गुण और शक्तियों का पुंज हूँ। लाइट माइट स्वरूप हूँ। अब मैं आत्मा प्रकाश मैं काया वाले शरीर में प्रवेश कर इस साकार जगत से पार सूर्य चांद तारागण से भी परे सूक्ष्म लोक में जहां सर्वत्र शांति और पवित्रता है श्वेत चांदनी है इस लाइट के देश में, मैं हल्का फुल्का लाइट स्वरूप फरिश्ता एक अलौकिक अनुभूति कर रहा हूं। सामने से फरिश्तों के बादशाह मुझ फरिश्ते की ओर खींचे आ रहे, बाप दादा के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, नैनों से निकलती हुई पवित्रता की रश्मियां मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा से बातें करें, बाबा मैं आपकी योगिन बच्ची हूं, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी श्रेष्ठ संकल्प धारी आत्मा हूं। बस बाबा मैं पवित्रता का रक्षा कवच पहन स्वयं के साथ अनेकों की आसुरी वृत्ति का नाश करूंगी। जिगरी रूरिहान करिए।
वतन की वो मुलाकातें वतन की वो मुलाकातें हर पल याद आती है, तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है।
एक दिव्य शक्ति बन जाए।